नए अभिजन समूहों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर संक्षेप में विचार किया जा चुका और अब मैं कुछ धारणाओं और विश्वासों की चर्चा करूंगा जो उनकी परंपरा के अंग थे। यह याद रखना आवश्यक है कि यूरोपीय आलोचना के प्रत्युत्तर स्वरूप भारतीय चिंतन परंपराओं, संस्कृत और इतिहास की पुनर्व्याख्या में अभिजन ने सृजनात्मक योग दिया है। उनका यह योग अंग्रेजों से वस्तुएं, धारणाएं और संस्थाएं उधार लेने तक सीमित न था। उधार लेने में बड़ा चयन था और उधार ली गई सामग्री का विस्तार और पुनर्व्याख्या भी की गई। अभिजन समूहों की पृष्ठभूमि और परंपराओं की जानकारी से इस चयनशीलता पर कुछ प्रकाश पड़ता है। विभिन्न अभिजन समूह भारत में अंग्रेज समाज में अपने अनुरूप समाज समुदाय को का मुंह ताकते थे, बल्कि अंग्रेजों का मुंह तो लोगों के सभी समुदाय ताकते थे, जबकि कुछ समुदाय उसके विशेष समुदायों का मुंह ताकते थे। यद्यपि अंग्रेज व्यापारियों से वास्तविक संपर्क बड़े नगरों के केवल कुछ एक भारतीय व्यापारियों का ही होता था, फिर भी अंग्रेज व्यापारियों के तौर तरीकों, रवैयों और धारणाओं के विषय में समस्त भारतीय व्यापारी वर्ग के मन में अपनी अपनी कल्प कथाएं और कल्पनाएं थी। भारत की धार्मिक, बौद्धिक, नैतिक, साहित्यिक और कलात्मक परंपराओं की समृद्धता और बहुरूपता के विषय में बहुत से विद्वानों ने व्यापक रूप से चर्चा की है और यहाँ मेरे लिए उस विषय में कुछ भी जोड़ना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए धर्म के क्षेत्र में कन्फ्यूशी धर्म को छोड़कर संसार के प्रत्येक मुख्य धर्म का प्रतिनिधित्व भारत में मौजूद है। भारतीय संस्कृति और चिंतन के अध्येताओं ने हिंदू धर्म की सहिष्णुता और सभी धर्मों की सत्यता की पुष्टि के लिए उसकी तत्परता पर टिप्पणी की है। राधा कृष्णन ने लिखा है, किसी देश और किसी धर्म ने दूसरे धर्मों को समझने और सराहने का यह रवैया ऐसे आग्रह के साथ और संगति पूर्वक नहीं अपनाया है जैसे भारत में हिंदू धर्म और उसकी शाखा बौद्ध धर्म ने। मुख्य धारा सहिष्णुता की ही रही है, यद्यपि कभी कभी धर्मांधता और अन्य धर्मों के लोगों पर अत्याचार के विस्फोट भी हुए हैं। इस भांति दक्षिण में शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच और उनके तथा जैनों के बीच कुछ असहिष्णुता रही है, पर कुल मिलाकर हिंदू धर्म मूलतः सहिष्णु है और कट्टरता पूर्वक बहिष्कृत करने के बजाय आत्मसात अधिक करता रहा है। वास्तव में बहुत से शिक्षित हिंदुओं को भी समझने में कठिनाई होती है कि कोई कैसे अपने धर्म को ही सत्य और बाकी सबको मिथ्या मान सकता है। धर्म प्रचारकता उन्हें आक्रामक असहिष्णुता और अभिव्यक्ति जान पड़ती है। जाति व्यवस्था सहिष्णुता के लिए एक स्वस्वागत आधार प्रस्तुत करती है। जाति युक्त समाज में रहना बहुत्ववादी सांस्कृतिक जगत में रहना है। प्रत्येक जाति के अपने अलग धंधे, रीति रिवाज, कर्मकांड, परंपराएं और धारणाएं हैं। जाति की पंचायतें, विशेषकर स्थानीय प्रभु जाति की पंचायतें इस बंधुत्व की संरक्षक होती हैं। क्या सांस्कृतिक बहुत्व की इस बात के साथ संगति है कि प्रदेश की जातियों का सोपान होता है और उसमें पारस्परिक पद के विषय में गतिशीलता भी होती है और विवाद भी। पहली बात तो यह है कि सोपान की धारणा विभिन्न स्तरों पर असीम जातियों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को यदि पुष्ट नहीं करती तो उनके अनुकूल तो है ही। दूसरे सोपान के केवल दोनों छोर ही निश्चित होते हैं, उनके बीच में पारस्परिक पद के लिए बहुत विवाद चलता रहता है। पद के बदलने पर जीवन शैली का संस्कृतिकरण हो जाता है। इस प्रकार जाति व्यवस्था के कारण विपथगामियों का दमन आवश्यक ही हो गया। विद्रोही संप्रदाय या समूह की कालांतर में अपनी अलग जाति बन जाती थी, जिसके फलस्वरूप देश भले ही शेष समाज से उसके पूर्णतः पृथक हो जाने की कीमत पर उसका अस्तित्व बने रहने का भरोसा रहता हो था। विडम्बना यह है कि कुछ मामलों में ऐसे संप्रदाय बहुत समाज की संपूर्ण जाति व्यवस्था अपने सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होती थी। उदाहरण के लिए सिखों, लिंगायतों और जैनों को देखिए, कभी कभी कोट, टोड, बडग और कुरूब जैसे जनजाति समूह भी अपने पारस्परिक संबंधों को नियमित करने के लिए जाति व्यवस्था के आदर्श का उपयोग करते थे। हिंदू धर्म की सहिष्णुता 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी बनी रही। न केवल राजा राम मोहन राय और गांधी जैसे शिक्षित और पश्चिमीकृत भारतीयों ने ईसा मसीह के व्यक्तित्व और शिक्षाओं की गहरी सराहना की, बल्कि बंगाल के निरक्षर ब्राह्मण संत रामकृष्ण ने परानुभूति के एक अनोखे प्रयास द्वारा भीतर से यह अनुभव प्राप्त करने का प्रयास किया कि विभिन्न धर्मों को अपनाने का क्या प्रभाव होता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का निर्णय भी सहिष्णुता की इस परंपरा के अनुरूप ही है। पर धर्मनिरपेक्षता की भारतीय धारणा उदाहरण के लिए अमेरिकी धारणा से भिन्न है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में दोनों धारणाओं के अंतर पर विचार उत्तेजक विवेचन के लिए देखिए मार्क गैटलर का निबंध। अभिजन समूहों द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त बौद्धिक परंपरा की एक विशेषता रही है निरंतर आत्म आलोचन। यह उत्तर वैदिक काल से चली आती है। इस भांति ब्राह्मणों के अत्यधिक विकसित यज्ञवाद के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया बौद्ध और जैन धर्मों के कुशेक ब्राह्मणों में भी हुई। भारतीय दार्शनिक परंपरा अनेक रूपता में समृद्ध है और विभिन्न मतों को मानने वालों के बीच सार्वजनिक शास्त्रार्थ की पद्धति दीर्घ काल से चली आती है। गुरु की सबसे बड़ी सफलता ऐसे शिष्य तैयार करने से मानी जाती थी जो उसे तर्क में हरा दे। मध्य युग के भक्ति आंदोलन में जाति में निहित असमानता की धारणा के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के पारंपरिक मार्गों की बौद्धिकता के विरुद्ध विद्रोह समाविष्ट है। इस भांति उत्तर भारत के मध्ययुगीन संत रामानंद ने असमानता और खान पान में जातिगत भेदाभेद की धारणा पर प्रहार किया। हिंदुओं और समाज पर वैष्णव धर्म के प्रभाव के विषय में एस्टलीन कारपेंटर ने लिखा है, उसका उद्देश्य था धर्म को ब्राह्मण कर्मकांड से सुरक्षित क्रियाओं से निकालना और उसकी आशाओं और विशेषाधिकारों के द्वार हर पद और जाति के हर नस्ल और धर्म के स्त्री पुरुषों के लिए उन्मुक्त करा देना। उसे किसी पुरोहित की आवश्यकता न थी क्योंकि प्रेम की पूजा के लिए कोई पुरोहित अनुमति नहीं चाहिए और ईश्वर की कृपा किसी मनुष्य के वश में नहीं। सहिष्णुता, सहनतिवाद और आत्म आलोचन की परंपराएं अंग्रेजी राज में बहुत पहले से ही प्रकट हुई। राजा राम मोहन राय, जिन्हें सचमुच ही आधुनिक भारत का पैगंबर माना जा सकता है, समकालीन हिंदू धर्म के कड़े आलोचक थे और उन्होंने अंग्रेज सरकार की सती प्रथा बंद करने और अंग्रेजी में आधुनिक ज्ञान की शिक्षा के लिए स्कूल प्रारंभ करने के आग्रह में नेतृत्व किया। 1823 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उन्होंने सचमुच विरोध किया। वे नहीं चाहते थे सार्वजनिक धन तनिक भी संस्कृत शिक्षा पर खर्च हो, इसके बजाय अंग्रेजी शिक्षा पर हो, किंतु वे स्वयं पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की उपज थे और उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू करने के पहले अरबी और फारसी का अध्ययन किया था। अंग्रेजी के अध्ययन का प्रारंभ तो 24 वर्ष की उम्र में हो गया। प्रारंभ में उन पर सूफी मत का प्रभाव पड़ा और बाद में ईसाई धर्म के प्रति उनको अनुराग हुआ। ईसाई धर्म पर अपनी शोध के लिए उन्होंने हिब्रू और ग्रीक भाषाएं सीखी। 1820 में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था जीसस के सिद्धांत, शांति और सुख के पथ प्रदर्शक। 1828 में उन्होंने एक आस्तिकतावादी संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना की और उपनिषदों और वेदांत सूत्रों का गंभीर अध्ययन किया जो उन्हें सूफी मत और ईसाई धर्म से तुलनीय जान पड़े। राजा राम मोहन राय आजीवन हिंदू समाज के कट्टरतावादी तत्वों से लड़ते रहे। बहुत से तत्कालीन रीति रिवाजों की उन्होंने यह कहकर निंदा की कि वे शास्त्र सम्मत नहीं है और उन्होंने तर्क बुद्धि की कसौटी अपनाने का अनुरोध किया। उसके लिए उन्हें उपनिषदों में ही आधार मिला। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक तक भारतीयों के बीच एक पश्चिमीकृत बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हो चुका था और इस वर्ग के नेता ही नए और आधुनिक भारत के आलोक दाता बने। इन नेताओं में ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं जैसे ठाकुर परिवार, विवेकानंद, रानाडे, गोखले, तिलक, पटेल, गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राधा कृष्णन। पश्चिमीकृत बुद्धिजीवी वर्ग संख्या और शक्ति में बढ़ता गया और 1947 में स्वाधीनता के उदय ने उसे भारतीय जीवन में शांतिपूर्ण क्रांति की योजना बनाने का अधिकार प्रदान किया। अब मैं नए अभिजन के कुछ दुविधाओं और संघर्षों का उल्लेख करूंगा। उनकी प्रथम और बल्कि बुनियादी विशेषता थी उनके अपने समाज के प्रति और अंग्रेज शासकों के प्रति एक प्रकार उभयभाविता। उनका उग्र आत्म आलोचन समकालीन भारत की कई विशेषताओं और संस्थाओं को बदलने या मिटा देने की तीव्र लालसा में प्रकट होता था। कुछ तो ऐसी भयंकर कुरीतियां थीं जैसे सती प्रथा, ठगी मानव बलि, बालिका हत्या, दास प्रथा, अस्पृश्यता और धार्मिक वेश्यावृत्ति, और फिर कुछ अन्य कम भयंकर थी जैसे बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विवाह और अंतिम संस्कार के अवसरों पर अत्यधिक खर्च, पर्दा प्रथा और तलाक, विधवा विवाह और समुद्री यात्रा पर पारंपरिक प्रतिबंध। ईसाई धर्म प्रचारक तुरंत ही हिंदू धर्म की कुरीतियों पर टूट पड़े थे और उनकी निंदा करके तुलना में ईसाई धर्म की श्रेष्ठता समझाते थे। ओमौली ने के अनुसार ईसाई धार्मिक प्रकाशन हिंदू धर्म के दोषों, जाति प्रथा की बुराइयों आदि की ओर ध्यान आकर्षित करते थे और ईसाई धर्म की सत्यता तथा पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता बताते थे। सक्रिय ईसाई धर्म प्रचार को अब उत्तरी भारत में 25 वर्ष से भी अधिक हो चुके थे और 1807 में लॉर्ड मिंटो का ध्यान इस बात की ओर गया कि फूहड़ तरीकों से के कारण उसका प्रभाव यह हो रहा है कि हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के अनुयायी ईसाई बनने की बजाय विरोधी बनते जा रहे हैं। हिंदुओं से आग्रह किया जाता था कि वे समूची जाति व्यवस्था को अर्थात अपनी संपूर्ण समाज व्यवस्था को और अपने सबसे प्रिय तथा गहरे जमे हुए धार्मिक सिद्धांतों को मिटा दे। श्रद्धास्पद समझे जाने वाले ब्राह्मणों की निंदा से रोष जागृत होता था, किंतु यह सिक्के का एक पहलू ही है। दूसरी ओर यह तथ्य भी है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से प्रारंभ करके विद्वजनों के समुदाय ने देखा कि संस्कृत साहित्यिक विधि संबंधी और दार्शनिक रचनाओं का अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में अनुवाद किया गया और पुरातत्वविदों, मुद्रा शास्त्रियों और पुरालेखविदों के कार्य द्वारा भारतीय इतिहास और प्रागितिहास का क्रमशः उद्घाटन होने लगा। पश्चिमी और पश्चिमी प्रेरित विद्वानों के कार्य के फलस्वरूप भारतीय सभ्यता के लिए नए और वस्तुनिष्ठ परिप्रेक्ष्य प्रकट हुए। वह ऐसी सभ्यता थी जो काल में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व तक जाती थी और आश्चर्यकारी रूप में सर्वतोमुखी थी। इस भांति नए अभिजन को अपने देश के प्रति, उसकी समृद्ध और प्राचीन संस्कृति के प्रति गर्व का भाव प्राप्त हुआ। इससे उन्हें पश्चिम की भीम मूर्ति का सामना करने की शक्ति मिली और यह उनकी एक राष्ट्र बनने, स्वाधीन, सर्वसत्ता संपन्न और दूसरों के बराबर होने की लालसा में निरंतर शक्ति का स्रोत बना रहा। किंतु अतीत की इस उपलब्धि में छिपे गहरे और खतरे भी थे। इसने सब शिक्षित भारतीयों में कुछ न कुछ पूरा केंद्रिता उत्पन्न की और जैसा कि सर्वविदित है, महान अतीत या तो ऊर्जादायक हो सकता है या निंदादायक, किंतु मुख्यतः उसने ऊर्जादायक का काम किया और आधुनिक भारत को राष्ट्रीय आत्म परिचय और विकास के लिए एक गूढ़ शक्ति प्रदान की। राष्ट्रीय चेतना की जागृति के साथ ही साथ प्रादेशिकता, सांप्रदायिकता और जातिवाद का भी उदय हुआ। इससे उदयोन्मुख भारत के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई और आज भी हो रही है। अपने समाज के प्रति उभयभाविता से ही संबद्ध एक दूसरी उभयभाविता थी अंग्रेजों के प्रति। तरह तरह की बातों के लिए अंग्रेजों की सराहना भी होती थी और उनसे ईर्ष्या भी। उनके पास राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी, संगठन था, अनुशासन था, वे नए ज्ञान, विचारों और औद्योगिकी के स्वामी थे। कुल मिलाकर वे योग्य और न्यायप्रिय प्रशासक थे, ईमानदार व्यापारी थे, बहादुर योद्धा थे और निडर शिकारी थे। सभी हिंदुओं को यह बात भी आश्चर्यचकित करती थी कि वे हर भोजन के साथ मांस और भी हर प्रकार का मांस, अपवित्र सुअर की मांस और वर्जित गोमांस तक खाते थे। पर्याप्त मात्रा में शराब पीते थे और निरंतर पाइप या चुरूट पीते रहते थे। आज भी कभी कभी वयोवृद्ध भारतीय से उन अंग्रेजों के अनुशासन, लगन और निष्पक्षता की प्रशंसा सुनाई जान पड़ती है, जिनसे उनका कभी संपर्क हुआ होगा। जहां शिक्षित भारतीय धर्म प्रचारकों के प्रचार कार्य को बहुत बुरा समझते हैं, वहीं वे जनता के सभी समुदायों, विशेषकर अछूतों और स्त्रियों के लिए शिक्षा और चिकित्सा सुलभ बनाने में धर्म प्रचारकों के उत्तम कार्य की निःसंकोच सराहना भी करते हैं। कुछ भारतीय सुधार आंदोलनों ने, जैसे पंजाब के आर्य समाज, सनातन धर्म सभा और सिख खालसा, बंगाल के रामकृष्ण मिशन और पूना भारत सेवक संघ और दक्कन शिक्षा समाज ने, इन सभी ने ईसाई धर्म प्रचारकों के अनुकरण में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास शुरू किए। प्रचारकों के काम की सराहना से भारती स्वयं अपने समाज के प्रायः बड़े तीव्र आलोचक हो जाते थे। लगातार अपने और अपने शासकों के बीच अंतर को देखते रहने से बहुत से शिक्षित भारतीयों के मन में एक प्रकार का हीन भाव भी उत्पन्न होता था, जो खुल्लम खुल्ला आत्मभर्त्सना से लगाकर प्रत्येक पश्चिमी वस्तु की कटु निंदा तक अनेक प्रकार से और अनेक रूपों में अभिव्यक्ति पाता था। विदेश प्रेम, पूरा केंद्रिता तथा साम्यवाद और भारतीय जीवन तथा संस्कृति के तीव्र आदर्शीकरण के साथ साथ पश्चिमी जीवन और संस्कृति का अभद्र उपहास आदि विविध प्रक्रियाएं पश्चिम के प्रति शिक्षित भारतीयों में होती थी, और अक्सर एक ही व्यक्ति एक मुद्रा छोड़कर दूसरी अपना लेता था। अंग्रेज भी, विशेषकर उनमें से कम संवेदनशील व्यक्ति, भारतीयों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार करते थे और उच्चतम जातियों की भांति कट्टरता पूर्वक पृथकता बरतते थे। स्पीयर के अनुसार मानव जाति विज्ञान सोसाइटी का एक अध्यक्ष कहता था कि नस्ल से ही भारतीय यूरोप वासियों से हीन है। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक ने 8वें दशक में आम अधिकारी वर्ग की इस राय के विरुद्ध शिकायत की थी, सिर्फ अंग्रेज ही कोई काम कर सकते हैं। भारत को साधारणतः एक पराजित और उसके निवासियों को एक अधीन नस्ल माना जाता था। यहाँ भी एक सामान्य बुराई ने सामान्य प्रतिरोध उत्पन्न किया। ब्राह्मण और शूद्र दोनों को एक ही प्रकार की शिकायत थी, और वे उसे दूर करने के लिए एक दूसरे की ओर खींचे, जो अन्यथा कभी न होता। इसी प्रकार हिंदू धर्म और भारत पर ईसाइयों के प्रहार से भी गहरा रोष था, विशेषकर इसलिए भी कि गोरे धर्म प्रचारकों को अंग्रेज शासकों का अनकहा समर्थन प्राप्त था। नस्ल, धर्म और बुद्धि के अहंकार एवं पृथकता के व्यवहार ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी थी, और आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्तन और प्रहार से उत्पन्न भय भी 1857 के भारतीय विद्रोह का एक कारण था। अंग्रेजों द्वारा सभी जातियों के साथ एक सा बर्ताव करने की प्रवृत्ति ने भी उच्च हिंदू जातियों और मुसलमान उच्च वर्गों को रुष्ट किया। नए अभिजन के लिए दो चेहरे रखना आवश्यक था, एक चेहरा स्वयं अपने समाज की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। अपने देशवासियों के सामने वे पश्चिम के प्रवक्ता थे, और शासकों के सामने वे अपने देशवासियों के। वे शासकों और गैर पश्चिमीकृत जनता के बीच जरूरी बिचौलिए बन गए, और बीच बीच में दोनों ओर रहने वाले आघातों को नरम करने के तकिये का काम करते थे। नए अभिजन कट्टर विचारों के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। इन नेताओं के पास विरोधी विचारों के समर्थकों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से जाति से बहिष्कृत करने अथवा उन पर जुर्माना करने का अधिकार था। जाति बहिष्कार गंभीर बात थी, क्योंकि बहिष्कृत व्यक्ति और उनके परिवार के साथ जाति का कोई व्यक्ति विवाह अथवा अन्य किसी प्रकार का सामाजिक संपर्क नहीं रख सकता था। नए अभिजन की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने तक कट्टरपंथी उन्हें परेशान करते रहे। डी.डी. कर्वे की पुस्तक नए ब्राह्मण में समर्पित व्यक्तियों के इस अग्रगामी समूह की कठिनाइयों और परेशानियों का कुछ आभास मिलता है, भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के काम में जिनके योग को परवर्ती पीढ़ियों ने पर्याप्त मान्यता नहीं दी है। कट्टर पंथियों के साथ विवाद में नए अभिजन को ऐसे तर्कों का उपयोग करना पड़ता था जिनको न केवल कट्टर पंथी बल्कि आम जनता भी स्वीकार करे। इस भांति कट्टर पंथियों के लिए हिंदू धर्म शास्त्रों का प्रमाण सबसे बड़ा था और कोई भी रीति रिवाज चाहे जितना अनिष्टकारी हो उसका पालन इसलिए आवश्यक था क्योंकि शास्त्रों में उसकी अनुमति या समर्थन है। शास्त्र एक व्यापक शब्द है और उसमें बहुत से ग्रंथ आते हैं जिनमें से सभी समान रूप से प्रमाण नहीं है और न सब में एकमत पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मुद्रण के प्रचार के पहले केवल मुट्ठी भर पंडितों की ही धर्म ग्रंथों तक पहुंच थी और कुछ ग्रंथों में तो बाद के क्षेपक द्वारा परिवर्तन हो गए थे। विल्सन और मैक्स मूलर जैसे परिवर्ती प्राच्य विद्याविदों ने यह माना है कि ऋग्वेद की वह एक पंक्ति जिसमें सती होने का आदेश बताया जाता था जानबूझकर अर्थ भ्रष्ट करती थी, पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 1808 से 30 में पंडितों का बोलबाला था और सरकार जिनसे अभिमत मांगती थी वे धर्म ग्रंथों के बारे में कोई शंका उठाने को तैयार न थे। कट्टर पंथी और सुधारक दोनों ही अपने विचारों के समर्थन में शास्त्रों की दुहाई देते थे। बुद्धिवादी राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष में शास्त्रों की दुहाई का सहारा लिया था। विद्यासागर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि शास्त्रों में वैधव्य का कोई विधान नहीं है और बम्बई में मांडलिक में समुद्री यात्रा सहित अन्य कई सुधारों के लिए पंडितों की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया था। हिंदू धर्म में शताब्दियों से ही होती असंख्य और दोषपूर्ण अभिवृत्तियों को निकालने के लिए राजा राम मोहन राय वेदों की ओर उन्मुख हुए और जब दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में वेदोत्तर अभिवृत्तियों की निंदा की और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की तो वे राजा राम मोहन राय का ही अनुसरण कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत के दिनों में जाकर ही सुधारक नेताओं ने रीति रिवाजों की वांछनीयता अथवा अवांछनीयता का निर्णय करने के लिए शास्त्रों की बजाय तर्क बुद्धि का सहारा लेना प्रारंभ किया और 20वीं शताब्दी में नारायण चंदावरकर अपने आप को शास्त्रों से अनुद्विग्न बुद्धिवादी सुधारक कहना पसंद करते थे। शायद यह प्रक्रिया इस प्रतीति के कारण द्रुततर हो गई कि रीति रिवाजों को निर्धारित करने में नियामक तत्व जाति है शास्त्र नहीं। अब से तर्क बुद्धि कसौटी बन गई और यह बताने का भार नए अभिजन पर पड़ा कि क्या तर्क संगत है और क्या नहीं। जो लोग समाज में मूलभूत परिवर्तन चाहते थे और जो उसकी बुराइयों की निंदा में सबसे मुखर थे ठीक वे ही पश्चिम को संबोधन करते समय भारत के अतीत गौरव को का सहायता उसकी सभ्यता की बहुविधता और निरंतरता का उल्लेख करते थे और युगों से भारत में उत्पन्न होने वाले असंख्य विचारकों और संतों की ओर उनके महान और उच्च विचारों की चर्चा करते थे। यह दुरंगापन नहीं बल्कि विभिन्न संदर्भों में कुछ निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही जटिल व्यापार के विभिन्न पक्षों पर बल देना था। इस भांति भारतीय समाज से उसकी बुराइयां दूर करके उसे ऐसे रास्ते पर डालना था जिस पर चलकर वह विकसित हो सके और अंततः पश्चिमी देशों से बराबरी के साथ होड़ ले सके। दूसरी ओर पश्चिम को विशेषकर ब्रिटेन को यह बताना जरूरी था कि भारत एक महान देश है जो अस्थायी रूप से दुर्दशाग्रस्त हो गया है पर जो जल्दी से जल्दी स्वाधीन होना चाहता है जिसमें अपनी स्थिति सुधार सके। यह भी एक विडंबना ही है कि भारतीय सभ्यता की प्राचीनता महानता और बहुविधता अधिकांशतः अंग्रेज और यूरोपीय अध्येताओं के कार्य से ही प्रकाश में आई थी पर इस उपलब्धि से भारतीयों के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई और उन्हें पश्चिम का बराबरी के साथ सामना करने और स्वतंत्रता तथा विकास के अधिकार की मांग करने के लिए आत्मविश्वास मिला। भारत की महानता देश की जनता के सामने भाषा देने वाले भारतीय राजनीतिज्ञों का भी प्रिय विषय थी। यहाँ भी उसका उपयोग जनता को कुछ भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने को उकसाने के लिए किया जाता था, पर कुछ भारतीयों के लिए पूरा केंद्रता वर्तमान के कठोर यथार्थ से भागने का साधन भी थी। 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले अंग्रेजी शासकों ने कुछ आवश्यक सुधार किए जिन्हें टाला न जा सकता था। भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी एकीकरण की नींव डाली और स्कूल तथा कॉलेज प्रारंभ किए। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के 3 विश्वविद्यालय शुरू किए गए और हाई स्कूल तथा कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुई। पर विद्रोह ने शासकों को झकझोर दिया और अपनी भारत विषयक नीति का पीड़ादायक पुनर्मूल्यांकन करने को बाध्य किया। परिणाम स्वरूप वे नई बातें लागू करने से विमुख हो गए और उन्होंने भारतीय संस्थाओं तथा रीति रिवाजों का भले ही वे कितने ही अप्रीतिकर हों सुधार करना छोड़ दिया। किंतु जिस समय भारत के शीघ्र आधुनिकीकरण की आशाएं अंग्रेज छोड़ रहे थे, उसी समय पश्चिमीकृत अभिजन का एक नया समुदाय प्रकट होने लगा था। गोरे आदमी को पता न था कि उसका भार भूरे कंधों पर पहुंचने लगा है और बहुत शीघ्र ही उसे इस स्थानांतरण का विरोध करना पड़ेगा। क्रमशः नए अभिजन की संख्या, शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई और उसकी अपने समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने की इच्छा ने अदम्य लालसा का रूप ले लिया। ऐसी लालसा का जिसमें धार्मिकता स्पर्श मात्र से कुछ अधिक थी। समाज को सुधारने की प्रक्रिया में अभिजन को पता चला कि भारत के आधुनिकीकरण के कार्य को तेजी और सफलता के साथ पूरा करने के लिए राजसत्ता की आवश्यकता है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने धार्मिक मामलों में कई हस्तक्षेप न करने की नीति बरतने का फैसला किया, पर हिंदू और इस्लाम धर्मों के सर्वव्यापी स्वरूप के कारण यह आसान न था। कई दशक पहले भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य उन्होंने आरंभ किया था, उसे तो चालू रखना ही था, भले ही उसके लिए बीच बीच में धर्म में दखल देना आवश्यक होता हो। 3 संस्थाएं दीवानी प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता क्रमशः 1859, 1860 और 1861 में कानून बनी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू हुआ। भारतीय तलाक अधिनियम 1869 में कानून बना और विशेष विवाह अधिनियम 1872 में, जिसके द्वारा अलग अलग जाति के लोगों को विवाह की अनुमति मिली। इस काल में और भी बहुत से अधिनियम स्वीकृत हुए, पर संहिता बनाने का काम 1882 तक लगभग संपूर्ण हो गया। भूमि के पट्टों से संबंधित कानून बनाने का काम, जो हर प्रदेश में अलग अलग था, बाद में उठाया गया। अंत में केवल कुछ हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों की संहिता नहीं बनाई गई, पर ब्राह्मण पंडितों और मुस्लिम काजियों को न्यायाधीशों की परामर्शदाता बनने की प्रथा 1864 में बंद कर दी गई। सर चार्ल्स बूड ने 1854 में खरीते में हर वर्ग के लोगों को यूरोपीय ज्ञान पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था और यह उद्देश्य शिक्षा की उच्च शाखाओं के लिए अंग्रेजी भाषा और जनसाधारण के लिए देशी भाषाओं द्वारा प्राप्त किया जाना था। भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देकर सरकार यह प्रकट कर रही थी कि वह जनसाधारण में शिक्षा प्रसार की आवश्यकता को पहचानती है। शिक्षा में निजी प्रयास को अनुदान व्यवस्था द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। विदेशी धर्म प्रचारकों के प्रयास इसी कोटि में आते थे। 1855 में प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, जिसका प्रधान एक अंग्रेज अफसर बनाया गया। 19वीं शताब्दी के मामूली अध्येता को भी यह स्पष्ट हो जाता है कि पारंपरिक भारतीय समाज में सुधार की प्रेरणा स्वतंत्रता की प्रेरणा से पहले आई थी। नए अभिजन को की पहली प्रतिक्रिया समकालीन भारतीय भारत की भयंकर सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए आंदोलन करने की हुई। राष्ट्रवादी प्रेरणा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्रमशः प्रबल हुई। यहाँ तक कि अंतिम दशक में यह प्रश्न बड़ी तीव्रता से उभर कर सामने आया कि सुधार पहले चाहिए या स्वतंत्रता। आत्म आलोचन की नई प्रवृत्ति और भारतीय समाज में बुनियादी परिवर्तन लाने की इच्छा बंगाल में 19वीं शताब्दी में बहुत प्रारंभ से ही दिखाई पड़ने लगी थी और राजा राम मोहन राय के कार्यों ने इस उभार में बहुत योग दिया था। हिंदू धर्म पर ईसाई प्रचारकों के प्रचारों के ने कट्टरपंथी और सुधारक दोनों को एक करके ईसाई धर्म के विरुद्ध आवाज उठाने को प्रेरित किया। डॉक्टर डफ ने जो उसी वर्ष 1830 भारत आए पाया कि देशी भाषाओं के अखबारों ने पहली बार ईसाई धर्म पर प्रबलता से प्रहार करना शुरू किया है और उसके विरुद्ध रोज सारे अखबारों की सामान्य विशेषता है अस्थायी प्रकाशन कुकुरमुत्तों की तरह निकलने लगे जो अधिकतर पेन की तर्क बुद्धि का युग के अंशों का शब्दशः अनुवाद का सहारा लेते थे। यह इस बात का दिलचस्प सबूत है कि समकालीन अंग्रेज साहित्य किस हद तक पढ़ा और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाता था। यहाँ इस बात की याद दिलाई जा सकती है कि बंगाल प्रदेश के लिए पहला मुद्रणालय 1801 में बैप्टिस्ट धर्म प्रचारक कैरी मार्शमैन और वार्ड द्वारा कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था और भारतीय भाषा बंगला की पहली पत्रिका उन्होंने 1818 में प्रकाशित की थी। 1830 तक कलकत्ता में बुद्धिवादियों का एक प्रभावशाली दल बन चुका था जो स्थानीय समाज को संपूर्णतः अस्वीकार करने के लिए बदनाम थे और जो उसके स्थान पर ईसाई धर्म सहित प्रत्येक पश्चिमी वस्तु को स्वीकार करते थे। यह उपयुक्त ही है कि वे अपनी पश्चिम की स्वीकृति का प्रतीक गोमांस खाने को मानते थे। राजा राम मोहन राय अपने धर्म संस्कृति और देश के साथ इतने प्रतिबद्ध थे कि उनकी इन पश्चिमवादियों से कोई सहानुभूति होना न संभव था। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म का सुधार करना और इससे इसने 19वीं शताब्दी के बंगाल और बौद्धिक और सामाजिक इतिहास में महत्वपूर्ण योग दिया। भारतीय समाज के सुधार का आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक प्रबल होता गया जब अचानक एक अन्य रुझान ने अभिजन के मन को घेरना शुरू किया। राष्ट्रीयता भारतीय राष्ट्रीयता ने यूरोपीय इतिहास और साहित्य के अध्ययन से और भारत के प्रति अंग्रेजों की नीति में उदारतावादी सूत्र से जो अंग्रेज शासन के बहुत प्रारंभ से ही दृष्टिगोचर था पोषण पाया था। अंग्रेजी साहित्य से परिचय तो 1830 में ही दिखाई पड़ने लगता है और 1838 में ट्रेवेलियन ने लिखा था हमारे साहित्य द्वारा हमसे परिचित होने के कारण भारतीय तरुण वर्ग प्रायः हमें विदेशी नहीं समझता, वे हमारे महापुरुषों के बारे में वैसे ही उत्साह से चर्चा करते हैं जैसा हम करते हैं। हमारी इस तरह की शिक्षा पाकर उन्हीं विषयों में रुचि लेकर और हमारे साथ एक ही कार्य में संलग्न होकर वे हिंदू से अधिक अंग्रेज हो जाते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलों के निर्माण, अखबारों में वृद्धि और शिक्षा के प्रसार, इन सभी ने राष्ट्रीयता के तीव्र उत्कर्ष में योग दिया। शिक्षित भारतीयों को प्रशासन और सेना के उच्च स्तरों में प्रवेश न देने और अंग्रेजों द्वारा नस्ली भेदभाव की नीति से आंदोलन को और भी बल मिला। राष्ट्रवादी सार्वजनिक सभा की स्थापना पूना में 1870 में हुई और भारतीय संघ 1876 में सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया। भारतीय संघ सीधे जनता को समझाकर जनमत बनाने और जागृत करने के लिए अभिजन का संगठन था। भारतीय संघ 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती था। उसके तात्कालिक लक्ष्य थे विधानसभाओं को प्रतिनिधिमूलक और सिविल सर्विस को अधिक भारतीय बनाना और उसके दीर्घकालीन लक्ष्य थे भारत को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करना तथा उत्तरदायी सरकार को का रूप प्राप्त करना। मैं यहाँ भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के विभिन्न चरणों को दिखाने का प्रयास नहीं करूँगा और केवल इस विरोधाभास की ओर इशारा करूँगा कि जो नया अभिजन शताब्दी के प्रारंभ में समकालीन भारत की बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से चला था उसे बढ़ती हुई राष्ट्रीयता ने पछाड़ दिया। यह स्वाभाविक ही था कि संघर्ष नहीं तो कम से कम वाद विवाद उनके बीच अवश्य हुआ जो कहते थे कि समाज सुधार को स्वतंत्रता की मांग से प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जो इससे उल्टा विचार रखते थे। कांग्रेस का पहला वर्ग नरम दली कहलाता था और दूसरा गरम दली। नरम दली लोगों के प्रतिनिधि थे महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले, और गरम दली लोगों के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों दलों के बीच दूर मतभेद दूर नहीं हो सके। फूट के इस दोहरे सवाल अंग्रेज सरकार की ओर तथा समाज सुधार की ओर रवैयों को लेकर पड़ी। तिलक का नारा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वे विदेशियों से किसी समझौते के लिए तैयार न थे और उन्हें देश के से बाहर निकालना चाहते थे। मन ही मन वे हिंसा के पहले लकीर खींचते थे, पर यह स्पष्ट है कि यह कार्य नीति संबंधी निर्णय था, नैतिक आस्था नहीं। गोखले तर्क में उदार सिद्धांतों में सहयोग में और क्रमिक सुधार में विश्वास करते थे और इन विचारों के समर्थन में अपनी समझाने की अमर क्षमता का प्रयोग करते थे। समाज सुधार के बारे में भी उनके बीच मतभेद था, जो सभी राष्ट्रवादियों के लिए ज्वलंत प्रश्न था। गोखले और नरम दली इसी पर जोर देना चाहते थे और इसमें सरकारी सहयोग का स्वागत करते थे, क्योंकि वे मानते थे केवल सामाजिक पुनर्जागरण द्वारा ही नया भारतीय राष्ट्र सत्ता के सूत्र संभालने योग्य सफल बन जा सकेगा। इसके विपरीत तिलक हिंदू समाज में बाहर से कोई हस्तक्षेप नहीं कर चाहते थे। उनके विचार से पहले स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज सुधार बाद में। इस संघर्ष में गरम दल की विजय हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1906 में स्वशासित अंग्रेज उपनिवेशों के समान स्वशासन व्यवस्था का अपना लक्ष्य बनाया। गरम दल और नरम दल के बीच खुला अलगाव अगले वर्ष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ, जहां गरम दल को कांग्रेस से निकाल दिया गया। किंतु जब लगभग 13 वर्ष बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला तो समाज सुधार के कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम में ही शामिल कर लिए गए। गांधी ने अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियों के उत्थान, सांप्रदायिक एकता, ग्रामीण उद्योगों विशेषकर खादी का पुनरुद्धार, प्रौढ़ शिक्षा, हिंदी प्रचार और नशाबंदी पर जोर दिया। लुई ड्यूमा ने लिखा है, तिलक और गोखले के बीच गांधी की स्थिति अत्यंत विशिष्ट है। यह संभव जान पड़ता है कि अपने पूर्ववर्ती सुधारवादियों की भांति गांधी जातिबद्ध समाज द्वारा होम रूल जैसी चीज की मांग करने में निहित अंतर विरोध को पहचानते थे, और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सुधारवादी और उग्रपंथी दोनों धाराओं को समन्वित किया, क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को स्वाधीन होने की मांग करने के साथ साथ अपने आप को सुधार सकने की क्षमता भी देखी जानी चाहिए। यह मानना तर्कसंगत लगता है कि गांधी का लक्ष्य भी दोहरा था, स्वाधीनता प्राप्ति और हिंदू धर्म की रक्षा। दोनों लक्ष्यों की सिद्धि के लिए सुधार का प्रारंभ दिखाना आवश्यक था, पर सुधार के काम को वास्तव में स्वाधीनता के अधीन रखा जा गया था, चाहे ऐसा जानबूझकर न किया गया हो। किंतु इसमें संदेह है कि प्रथम महायुद्ध के बाद कोई व्यक्ति गांधी भी भारतीय जनता को यह समझा सकता कि उसके समाज का सुधार स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। यह विवाद 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही अंतिम रूप से समाप्त हो चुका था। इसके अतिरिक्त युद्ध ने राष्ट्रीय भावना को बहुत तीव्र कर दिया था और बहुत से भारतीयों के मन में यह आशा जागी थी कि युद्ध के बंद होते ही भारत को किसी न किसी रूप से उत्तरदायी शासन अवश्य प्राप्त होगा। भारत के पश्चिमीकरण ने भारतीयों में अपने पारंपरिक समाज को बदलने की प्रेरणा उत्पन्न की, किंतु समय के साथ एक अन्य अधिक प्रबल वास्तव में अधिक मूलभूत प्रेरणा स्वतंत्रता की प्रेरणा के सामने उसका स्थान गौण हो गया। धर्म, जाति, भाषा और प्रदेश के आधार पर खंडित देश में तीव्रतर राष्ट्रीय आत्मचेतना आवश्यक रूप से सामाजिक ढांचे के उच्चतम से लगाकर निम्नतम तक प्रत्येक स्तर तीव्रतर आत्मचेतना में निहित है। एक के बिना दूसरी नहीं हो सकती। पुराने और नए अभिजनों में अत्यधिक तादाद में और उसके फलस्वरूप परंपरा से अधिकारहीन समूहों का नई सुविधाओं से वंचित होने और इसके साथ ही विदेशी और शक्तिशाली शासक की उपस्थिति, जिसने स्वभावतः समाज के भीतर गहरे विभाजनों का लाभ उठाया, इन सब के परिणाम स्वरूप इस उपमहाद्वीप का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। स्वाधीन भारत अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ही पारंपरिक और जन्मजात असमानताओं विशेषकर अस्पृश्यता को परिणाम स्वरूप जनजातियों, हरिजनों और पिछड़ी हुई जातियों के प्रति सुधारात्मक भेदभाव अथवा उल्टे भेदभाव की नीति अपनाई है, जिससे यह समूह आगे बढ़े हुए समूहों के बराबर आ सके। अंत में संप्रदायों और धर्मों के विषय में आत्म चेतना और परिणाम स्वरूप परंपराओं की सांप्रदायिकता की बल्कि पुनः स्थानवाद और पुनर्व्याख्या हुई है। आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण मिशन, सिख खालसा और अलीगढ़ आंदोलन जैसे पुनरुत्थानवादी आंदोलनों ने भी आधुनिक ज्ञान सिखाने वाली शिक्षा संस्थाओं की, छात्रावासों आदि की स्थापना की है। इसने कुछ समय बाद पश्चिमी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति तो उत्पन्न किए, पर वे अपने अपने धर्म या संप्रदाय की पृथक और श्रेष्ठता पर बल देते हैं। उनके और राष्ट्रवादियों के बीच निरंतर कड़ा संघर्ष रहा, जिसके कारण न केवल भारत और पाकिस्तान बने बल्कि जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में अपने अपने अस्तित्व और विकास के लिए आशंकाएं भी बद्धमूल हैं।